हरे कृष्ण। आज गोवर्धन पूजा का दिवस है। आज ही के दिवस पर श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 4 अध्यायों में इस लीला का वर्णन है। पहले अध्याय में वर्णन किया गया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोक दिया। दूसरे अध्याय में उन्होंने गोवर्धन धारण किया। तीसरे अध्याय में फिर सारे ब्रजवासी प्रसन्न हुए, इंद्र ने आकर फिर क्षमा याचना। तो ऐसे इन अध्यायों में इस लीला का वर्णन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। भगवान की अन्य सारी लीलाओं से ये विशेष लीला है। वैसे तो जितनी भी लीलाएं भगवान करते हैं उन सब में श्रेष्ठ लीलाएं हैं कृष्ण लीला। भगवान अलग अलग रूपों में, अवतारों में इस जगत में आते हैं, बहुत से रूप लेते हैं, असंख्य रूप। ऐसा नहीं है कि केवल 10 अवतार हैं भगवान के। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान के तो केवल 10 अवतार हैं, दशावतार। 10 प्रसिद्ध अवतार हैं, और वो भी प्रसिद्ध इसलिए हुए कि आज से करीब 700 वर्ष पूर्व जयदेव गोस्वामी नाम के एक बहुत महान वैष्णव ने एक स्तोत्र की रचना की, जिसे दशावतार स्तोत्र कहते हैं। स्तोत्र यानी स्तुति करना गीत के द्वारा। तो इसीलिए ये 10 अवतार प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने 10 अवतारों का वर्णन किया, दशावतार। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के केवल 10 अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। इतने सारे अवतार हैं कि सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज से कहते हैं कि इतने असंख्य अवतार हैं, मैं किस किस का वर्णन करूं। इसीलिए रुक जाते हैं कुछ अवतारों को कहकर। वो कहते हैं कि जैसे नदी में लहरें आती हैं, ऐसे अवतार हैं, कभी रुकते नहीं, आते रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी पहले आए, श्री कृष्ण बाद में आए, इसलिए रामचंद्र जी अच्छे भगवान हैं या वरिष्ठ भगवान हैं, बड़े भगवान हैं, और कृष्ण तो अभी अभी आए हैं इसलिए छोटे भगवान हैं। या फिर लोग कहते हैं कि जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, गोपियों के साथ नृत्य नहीं किया, केवल एक पत्नी व्रत धारण किया और उन्होंने मर्यादा का पालन किया, इसीलिए वो अच्छे भगवान हैं। कृष्ण ने आकर मारामारी की, स्त्रियों का हरण किया, युद्ध के लिए प्रेरित किया, रासलीला की, तो इसीलिए वो इतने अच्छे भगवान नहीं है। लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण इस जगत में जब आते हैं तो उन्हें लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। जब राम के रूप में आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वो सब कार्य मर्यादा में करते हैं, वो सारे अलग अलग संबंधों की मर्यादा को स्थापित करते हैं। एक पुत्र के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए, एक पति के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए, पिता के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए, राज्य के लिए, राजा के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए, ये सारी मर्यादाओं को भगवान श्री राम स्थापित करते हैं, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है, अर्थात वो लीलाओं को प्रकट करते हैं और लीलाओं के द्वारा हम सब के हृदय को आकर्षित करते हैं। और ये लीलाएं भगवान के धाम में शाश्वत चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार लीला हो गई फिर समाप्त, फिर आगे कुछ नहीं, सतत शाश्वत लीलाएं चलती रहती हैं भगवान के धाम में। और उन्हीं लीलाओं को कुछ क्षण के लिए आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से कुछ क्षण के लिए यहां पर वो प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में। तो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और इस लीला में वे ऐसे सारे लोगों को जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो भगवान को, जो श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, ऐसे सारे लोगों का मुंह बंद करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की। क्योंकि कौन गोवर्धन उठा सकता है? आज भी जब गोवर्धन की परिक्रमा करें तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, केवल एक बार ऐसे घूमना। आप लोग तो यहां बहुत जल्दी घूम लेंगे, लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। कई लोगों को 6-7 घंटे लग जाते हैं एक परिक्रमा करने में, और अब तो गोवर्धन छोटा होता जा रहा है, उस समय तो इससे बहुत विशाल था। और उस गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उठा लिया, तो ये दिखलाने के लिए कि वो भगवान हैं। और इतना ही नहीं, अपने भक्तों को भी हृदय में विश्वास दिलाने के लिए कि वे सबकी रक्षा कर सकते हैं और किसी भी तरह किसी भी अवस्था में वो रक्षा कर सकते हैं, ये विश्वास बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गोवर्धन लीला का था कि श्री कृष्ण ने ये एक ही ऐसी लीला की जो सारे ब्रजवासियों के साथ 7 दिन 7 रातों तक सतत वे रहे, किसी और लीला में वे नहीं रहे। बाकी लीलाएं होती थी, सुबह से शाम तक रहते थे, रात को घर चले जाते थे, या सुबह वन में चले जाते थे तो सबके साथ नहीं रह पाते थे। लेकिन एक ही लीला ऐसी हुई जिसमें 7 दिन 7 रातों तक श्री कृष्ण और सारे ब्रजवासी, फिर वो चाहे गाय हो, फिर वो चाहे अन्य कोई प्राणी हो, वो सब श्री कृष्ण को देख रहे थे। और श्री कृष्ण 7 दिनों तक खड़े रहे सबको अपना दर्शन देने के लिए। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण लीला है गोवर्धन लीला। बड़े विस्तार से आचार्य इसका वर्णन करते हैं, समय उतनी अनुमति नहीं देता आज कि हम बड़े विस्तार से इस कथा को कह सकें। संक्षेप में कहेंगे और थोड़े बहुत निर्देश जो हमारे लिए इस लीला में हैं उनको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। एक समय कृष्ण ने देखा कि घर में कोई यज्ञ की तैयारी हो रही है, नंद बाबा अपने सब लोग किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो वैसे अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता के पास आकर पूछने लगे कि ये कौन सा यज्ञ आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या ये शास्त्रों में वर्णित है, क्या इससे सही लाभ होता है, ऐसे प्रश्न करने लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद पिताजी बताएंगे नहीं, छोटा सा बालक है, इसको क्या बताना कि क्या हो रहा है। केवल 7 वर्ष के थे उस समय, कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, तो इसलिए उनसे कहने लगे कि अपनों से कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, आपको स्पष्ट बताना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर समझने की बुद्धि नहीं है, तो ये जान लीजिए मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, इसलिए बताइए। नंद महाराज ने कहा कि हर वर्ष हम ये यज्ञ करते हैं इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो इंद्र को क्यों प्रसन्न करना है? नंद बाबा ने कहा, अरे इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न उगता है, घास उगती है, उस घास को हमारी गायें खाती हैं, तो हम लोग अन्न उगाते हैं और गायों को चराते हैं, तो ये तो संभव होता है वर्षा से, और वर्षा इंद्र देते हैं, इसलिए हम उनको प्रसन्न करते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि पिताजी, जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन में फल मिलता है, जो भी उसे मिलता है वो तो कर्म के अनुसार मिलता है, इसमें देवता क्या करते हैं, इंद्र क्या करते हैं? अरे जब बादल, ये जो सारा जगत है ये तीन गुणों से चल रहा है, और जब बादलों में रजोगुण बढ़ जाता है वो वर्षा कर देते हैं, और उस वर्षा के कारण घास उगती है, और जो भी हमें प्राप्त हो रहा है इस जीवन में वो तो हमारे कर्मों का फल है, और कोई भी देवता हमारे कर्मों के फल नहीं बदल सकते। और अगर आपको पूजा ही करनी है उस व्यक्ति की, उस धान की जो आपको सब कुछ देता है, तो आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घास कहां मिलती है? गोवर्धन में। हमारी गायें वहां जाती हैं, हम लोग वहां उन्हें चराने जाते हैं, और फिर गायों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, हम तो ग्वाले हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो गोवर्धन पूजनीय है, ये इंद्र की पूजा क्यों? बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान समझा रहे हैं कि अगर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये मानते हुए कि वो हमारे कर्मों को बदल सकते हैं, वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, तो कृष्ण कहते हैं संभव नहीं है। वे केवल हमें हमारे कर्मों को प्रदान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन कर्मों को पूर्ण रूप से समाप्त करना ये देवी देवताओं के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भी कर्म में बंधे हैं। ये समझने की बात है, जो व्यक्ति खुद बंधा हो वो दूसरे को कैसे खोल सकता है? उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के हाथ पांव बांध दीजिए, मुंह बांध दीजिए और उसको फेंक दीजिए एक तरफ, कीजिएगा मत, ये केवल उदाहरण है, दूसरे व्यक्ति को आप बांध दीजिए और उसको दूसरी तरफ फेंक दीजिए, तो हाथ पांव बंधे हैं, मुंह बंधा है, सब कुछ बंधा हुआ है, क्या दोनों एक दूसरे को मुक्त कर सकते हैं? उनको मुक्त करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके हाथ नहीं बंधे हैं, जिसके पांव नहीं बंधे हैं, मुंह नहीं बंधा है। इसी तरह इस जगत में सारे जीव तीन गुणों से बंधे हुए हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, वे भी तीन गुणों के अधीन हैं। इसीलिए तो इंद्र बहुत चिंतित हो जाते हैं अगर कोई उनके सिंहासन की ओर आंख उठाकर भी देख लेता है। ये तीन गुणों का प्रभाव है, क्योंकि जो व्यक्ति तीन गुणों के परे है उसे सिंहासन से क्या लेना देना, उसे पद से क्या लेना देना। तो देवता भी तीन गुणों के अधीन है, दूसरी दृष्टि में वो भी बंधे हुए हैं, इसीलिए एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकता। तो जो भी इस जगत में हैं, वे इस जगत के लोगों को मुक्त नहीं कर सकते। इस जगत के लोगों को मुक्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस जगत का नहीं है, और वो है श्री कृष्ण, क्योंकि वो कोई देवता नहीं है। श्री कृष्ण तो अवतार भी नहीं है। अगर आप दशावतार स्तोत्र पढ़ें जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट वर्णन किया है 10 अवतारों का जिनमें कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। अवतारी अर्थात जिनसे अवतार आते हैं। तो ऐसे कृष्ण ये समझाने लगे कि सब कुछ कर्म से, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने दिया कि कर्मों में जब तक हम बंधे हैं जो भी फल हमें मिलेगा हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ये शरीर हमें बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा, हमें कोई चुनाव करने का अवसर नहीं मिला था, कई शरीर दिखाए नहीं गए थे शरीर लेने से पहले कि अच्छा ये वाला लोगे, ये लोगे, ये थोड़ा ये अमेरिका में पैदा होगा, ये रशिया में पैदा होगा, ये जापान में पैदा होगा, कौन सा चाहिए। बाध्य कर्मों के द्वारा हमें शरीर लेना पड़ा। तो इसी तरह इस जगत में कर्मों के अनुसार जो होता है, हमारे कर्मों को अगर बदलना है तो हमें दिव्यता चाहिए, और दिव्यता आती है दिव्य भगवान से जुड़ने से। तो इसीलिए भगवान ये समझाने लगे कि हमें देवी देवताओं की भक्ति करके, पूजा करके इस जगत का कुछ लाभ मिल सकता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं शिव जी कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु एव न संशयः। वो कहते हैं कि मुक्ति प्रदान करना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां, जितने भी लोग हैं उनमें मुक्ति प्रदाता अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाला विष्णु एव न संशय, केवल भगवान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो स्वयं शिव जी कहते हैं। तो इसीलिए अगर हमें इसी जगत में बने रहना है, जैसे उदाहरण के लिए कोई एक जेल में है, अब जेल में भी अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जो बड़े खूंखार आतंकवादी होते हैं उनको काल कोठरी में बंद किया जाता है अकेले अंधेरे में, जो बहुत छोटे मोटे चोर होते हैं उनको थोड़ा खुले में छोड़ दिया जाता है, और जो वैसे तो बहुत बड़े चोर होते हैं लेकिन राजनीतिक जो कैदी होते हैं जैसे राजनेता इत्यादि, तो उनको बड़ा अच्छा स्थान दिया जाता है, उनकी उनकी जेल में टीवी लगा होता है, कभी कभी एसी भी लगा होता है, सोफा पड़ा होता है, क्योंकि उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, जेल में गए हैं बड़ी बात है, राजनेताओं के लिए तो ये तिलक लगाने के समान है, उनका गर्व है कि वो जेल जाकर आए। विशेष करके भारत के कई स्थानों में जब इलेक्शन का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कॉलम होता है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या नहीं, तो हमारे ज्यादातर जो राजनीति के बहुत भरते हैं उसमें, वो कम पड़ जाती है जगह। तो ऐसे ये जेल हैं, लेकिन तीनों स्थानों पर चाहे कोई काल कोठरी में हो, थोड़ा बहुत खुले में हो, या वीआईपी सेल में हो, है तो जेल में, बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह हम इस जगत में देवी देवताओं की भक्ति करके काल कोठरी से निकलकर वीआईपी जेल तक पहुंच सकते हैं। वीआईपी जेल मतलब स्वर्ग, तो हम लोग थोड़ा स्वर्ग तक जा सकते हैं, थोड़ा घूमकर थोड़ा आनंद लेकर फिर वापस आना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर से वापस आना पड़ता है इस जगत में। तो कृष्ण ने यह समझाया, और देखिए ब्रजवासियों का विश्वास कृष्ण के ऊपर, छोटा सा 7 साल का बालक, आप कल्पना कीजिए आपके घर में कई वर्षों से, वर्षों नहीं कई पीढ़ियों से एक पूजा होती आ रही है, मान लीजिए गणपति की पूजा पीढ़ियों दर पीढ़ियां करती आ रही हैं। आपका छोटा सा 7 साल का बच्चा आता है एक दिन, कहता है ये सब बेकार की बात है, ये गणपति गणपति नहीं लाना, बंद करो भक्ति, हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। आप क्या करोगे, मान लोगे 7 साल का छोटा बच्चा, आप उसको 2 थप्पड़ लगाओगे, चुप, कुछ मालूम नहीं तुम्हें, ये हमारी वंश परंपरा है। वो कहेगा नहीं ये देवता हैं, इनके बड़े कृष्ण हैं, बोले तुम बाहर चले जाओ। लेकिन यहां ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, कृष्ण ने 7 साल के बच्चे ने कहा ये बंद कर दो यज्ञ, गोवर्धन की पूजा करो, स्वीकार कर लिया। ये विश्वास है उनका कृष्ण के ऊपर, ये प्रेम है उनका कृष्ण के ऊपर। तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और वो जो सारा भोग बनाया था इंद्र को चढ़ाने के लिए और भी बहुत सारा बनाकर उन्होंने गोवर्धन को अर्पण कर दिया। सीधे गोवर्धन को भोग लगाया, सब गोवर्धन के सामने बहुत कुछ रखा गया, अन्नकूट उत्सव से कहा गया, बहुत सारा बनाया। ये आगे चलकर और एक अन्नकूट उत्सव हुआ था जो माधवेंद्रपुरी ने किया था। तो जब इतना सारा लगाया उन्होंने, आज भी वो स्थान है जब हम लोग वृंदावन जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो उसमें एक स्थान आता है अनियोर गांव, उस गांव का नाम है अनियोर। अनियोर मतलब और चाहिए, और लाओ और लाओ। तो जब श्री कृष्ण को उन्होंने भोग लगाया गोवर्धन को, तो सबने देखा कि गोवर्धन के ऊपर स्वयं श्री कृष्ण, गोवर्धन को तो गोवर्धन वो नहीं जानते थे कि कृष्ण है, गोवर्धन के रूप में वो उन्होंने स्वीकार करना शुरू किया। जो भी भोग लगाया था सब खा लिए, बहुत सारे चावल दाल स्वीट्स समोसे पकौड़े सब खा। और फिर उन्होंने कहा अनियो और चाहिए। अब इन्होंने कहा अरे और कहां से लेकर आए, फिर दूसरे गांव से बनाकर लेकर आए, वो भी खा गए, बोला अनियो और चाहिए। चतुर लोग सोच लगे तो संतुष्टि नहीं हो रहे हैं, इतना कहां से खिलाएंगे इनको। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा चिंता नहीं करो, एक तुलसी का दल डाल दो बस। तो उन्होंने एक तुलसी का दल अर्पण किया, उसको खा के वो संतुष्ट हो गए, बस अब नहीं चाहे। देखिए इसी लीला के कारण उस गांव का नाम अनियोर पड़ गया, अनियोर, आज भी उसको अनियोर कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने ऐसे उसको स्वीकार कर लिया, गोवर्धन पूजा हो गई, सारे लोग सुखी हो गए, एक व्यक्ति दुखी हो गया और वो था इंद्र। इंद्र को पता चला कि अरे मेरी पूजा हो रही थी और ये छोटे से बालक ने बंद करवा दिया। इंद्र भूल गए वो छोटा बालक कौन है, कोई छोटा बालक नहीं है वो, तो दिख रहा है बालक है नहीं, है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, इंद्र ने कहा ये ब्रजवासी छोटे से बालक की, और वो भी कैसा बालक है, निंदा करने लगे कृष्ण की। वो कहते हैं ये बालक बहुत बोलता है, वाचालम वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः। इंद्र कहने लगे कि ये वाचालम, ये छोटा सा बालक इतना बोलता है, ये वाचालम बालिशम, बालिशम मतलब बच्चा है, वाचालम बालिशम स्तब्धम, स्तब्धम मतलब बड़ा अहंकारी है, ये बड़ा घमंडी है लड़का। देखिए ये इंद्र कृष्ण का गुणगान कर रहा है, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम, बिल्कुल अज्ञानी है, बात बड़ी बड़ी पंडित मानी ना, अपने आप को पंडित मानता है, ये अभी कर्म की बात कर रहा था, अपने आप को पंडित मानता बहुत बड़ा है अज्ञानी। और तो और कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य गोपामे चक्षुर प्रियम, कहता है ऐसे कृष्ण का ये मृत्यु लोक के लोगों ने इनका आश्रय ले लिया, कृष्ण मर्त्यम उपाश्रित्य गोपामे चक्षुर प्रियम, और मेरा अप्रिय कर दिया इन गोपों ने, बहुत क्रोध में आ। दरअसल आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सुंदर टीका की है इस श्लोक पर, वो कहते कि वैसे तो इंद्र ये निंदा कर रहे थे कृष्ण की, वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिना, लेकिन हर श्लोक जो कहा जाता है शास्त्रों में उसके दो अर्थ होते हैं। एक वो अर्थ जो हमें सामने दिखाई देता है जैसे ये अभी हमने कहा, और एक दूसरा अर्थ होता है जिसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। सारस्वत अर्थ मतलब सरस्वती उसको कैसे स्वीकार करती है, सरस्वती जो विद्या की देवी है वो उस श्लोक को कैसे स्वीकार करती है, उसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं सारस्वती ने कैसे स्वीकार किया इसको, सरस्वती देवी ने, तो उसको समझाते हैं वाचालम। वाचालम शब्द का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो शास्त्रों में दक्ष है, उसको वाचालम कहते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो वाचालम मतलब जो शास्त्रों में दक्ष है, तो शास्त्रों में दक्ष कौन हो सकते हैं, श्री कृष्ण। तो इंद्र गुणगान कर रहे हैं वाचालम बालिशम, बालिश मतलब बड़ा मासूम, मासूम अर्थात जिसके अंदर ना कोई द्वेष है, ना कोई घृणा है, ना कोई काम है, ना कोई क्रोध है, सारे दोषों से जो मुक्त है उसको बालिशम कहते हैं। बालिशम बच्चे के समान, जैसे छोटा सा बच्चा होता है उसके अंदर कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कोई एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं, तो इसीलिए वो कहने लगे कि श्री कृष्ण सारे दोषों से परे है। वाचालम बालिशम स्तब्धम, स्तब्धम मतलब एक अर्थ होता है बड़ा अहंकारी है, किसी के सामने झुकता नहीं है। दूसरा अर्थ होता है वो कृष्ण जिनको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब उनके अधीन है, इसलिए स्तब्धम यानी वो कृष्ण जो किसी के आगे नहीं झुकते, जिनको आवश्यकता नहीं है झुकने की। और अज्ञम, अज्ञम अर्थात एक अर्थ होता है अज्ञानी और एक अर्थ होता है ज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और पंडित मानिनः, मतलब जो बड़े बड़े पंडित हैं वो ये मानते हैं कि श्री कृष्ण वाचालम शास्त्र को जानते हैं, दोषों से परे हैं, उनको किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं और पूर्ण ज्ञानी हैं। पंडित मानिनः, ऐसा पंडित मानते हैं। तो खैर ऐसे इंद्र ने गुणगान कर दिया, ये कहना चाहिए अपनी तरफ से निंदा करी। और फिर कृष्ण को गुस्सा आया, इंद्र को गुस्सा आया, क्षमा कीजिए, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। और इंद्र ने कहा अपने बादलों को, संवर्तक बादल, संवर्तक बादल वो होते हैं जो प्रलय के समय वर्षा करते हैं, और उसका वर्णन किया गया है कि उसकी जो एक एक बूंद होती है, अभी जब बारिश होती है तो बूंद होती है, हम लोग ऐसे हाथ में ले सकते हैं, उस समय प्रलय के समय जब बारिश होती है तो उसकी एक एक बूंद एक एक खंभे के समान होती है, खंभा होता है ना ये आप देख रहे पिलर, तो वो बादलों को उसने आदेश दिया संवर्तक को कि जाओ और ब्रज को डुबा डालो। और फिर संवर्तक बादल तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं था, उनका सोने का समय था, लेकिन अचानक उठा दिया, आप क्रोध में आ गए और फिर जाकर ब्रज में वर्षा करने लगे। आप सोचिए अगर खंभों के समान बूंदे गिरने लगे पानी की तो क्या होगा। अभी कुछ वर्ष पहले, एक वर्ष पहले, डेढ़ वर्ष पहले वृंदावन में ओले पड़े थे, आप ओले जानते हैं, वो बर्फ के छोटे छोटे गोले साथ में पड़ते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, गारा, ओके गारा, इतने बड़े बड़े पड़े थे कि कारों के शीशे टूट गए, लोगों के घरों के शीशे टूट गए वहां पर। तो आप सोचिए इतने बड़े बड़े केवल, और जब एक खंभों के समान गिरे होंगे वो, तब क्या हुआ होगा। तो सब जगह हाहाकार, पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया, भागने लगे लोग, अपनी गायों को बचाने लगे, और सब ने जाके कृष्ण से प्रार्थना की कि बचाओ, अब देखो देखो इंद्र का प्रकोप, हमने पूजा नहीं की इंद्र की तो देखो क्या हुआ। और उस समय कृष्ण ने सोचा कि मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे शरणागत हैं, मैं इनका स्वामी हूं और मैंने व्रत लिया है कि मुझे भक्तों की रक्षा करनी है। देखिए भगवान का ये व्रत है, रामचंद्र जी ने भी इस बात को कहा, जिस समय विभीषण अपना सब कुछ छोड़कर, रावण को छोड़कर भगवान राम के पास चले आए, तो बाकी सारे जो लोग थे जो जो उनके सेना में, वो सब थोड़ा सोच रहे थे अरे ये मायावी लोग हैं, इनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चर्चा चल रही थी। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अगर कोई मेरी शरण आता है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी च याचते, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आकर बस इतना कहता है तवस्मी, मैं आपका हूं, अभयम, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं, व्रतम ममा, श्री रामचंद्र जी कहते मेरा व्रत है कि अगर कोई केवल बस मेरी शरण में आकर कह दे, और विभीषण क्या अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि तवास्मी, आज से मैं आपका हूं, उसको भी मैं अभय प्रदान करूं, व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है। तो ये श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरा व्रत है, मुझे भक्तों की रक्षा करनी है, शरणागतों की रक्षा करनी है, मैं स्वामी हूं इनका। और साथ ही साथ इंद्र को भी एक सबक सिखाना है। इंद्र को अहंकार हो गया है। दरअसल इस लीला के द्वारा भगवान इंद्र का अहंकार तोड़ना चाहते थे, क्योंकि इंद्र सोचने लगा था मैं देवताओं का राजा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कभी कभी ऐसा होता है, हमें कोई पद मिल जाता है जो भगवान की कृपा से मिलता है, हम भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। हमें धन मिल जाता है, हमें बल मिल जाता है, सौंदर्य मिल जाता है, शक्ति, ऐश्वर्य, यश, ये सब प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से, लेकिन हम भगवान की कृपा को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत ऐश्वर्यशाली हूं। इंद्र भी यही सोच रहे थे कि मैं राजा हूं देवताओं का, और इसीलिए इंद्र ने यह कार्य किया। और भगवान दिखलाना चाहते थे इंद्र को, उसकी उसके अहंकार को तोड़ना चाहते थे। अब प्रश्न ये आता है कि इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि इंद्र भक्त नहीं है, वो भी भक्त है, तो फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? एक तरफ अगर अपने भक्तों को, ब्रजवासियों को बचाना चाहते हैं, तो फिर इंद्र भी तो भक्त हैं, भगवान ने उनको भी तो बचाने का वचन लिया है, फिर इंद्र की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? भगवान अपने भक्तों की रक्षा कई तरीकों से करते हैं, कभी कभी उनके अहंकार को चूर करके उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो वो कृष्ण से दूर चला जाता है, व्यक्ति को जब अहंकार हो जाता है तो वो भक्ति से दूर चला जाता है, और भगवान उसकी रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए अहंकार को चूर चूर कर देते हैं, टूट जाता है, अपमान हो जाता है उसका, जैसे अविंद्र का होगा, देवताओं के राजा, और उसको सर झुकाकर एक 7 साल के बालक के सामने खड़ा होना पड़ेगा, कितने बड़े अपमान की बात है। तो क्यों भगवान ने उसको बचाया नहीं? भगवान ने बचाया, लेकिन दूसरी तरह से, उसके अहंकार को तोड़कर। इसीलिए भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं अलग अलग रूपों में। कभी कभी भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रेम से, जैसे पांडवों की साथ में रहकर उनकी रक्षा, अर्जुन रथ पे थे तो श्री कृष्ण हमेशा तीर चलाया, भीष्म ने तीर सीधे कृष्ण के, अर्जुन के गले में लगने वाला था और भगवान ने रथ को नीचे कर दिया, तो अर्जुन के मुकुट को लेकर चला गया। भीष्म ने देखा, अच्छा बचा लिया तुमने, कोई बात नहीं, फिर से चलाऊंगा। तो भगवान कभी कभी ऐसे रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान भक्त को कष्ट देकर उसकी रक्षा करते हैं। भक्त के जीवन में कष्ट आता है, बहुत कष्ट, लेकिन उन कष्टों में भक्त भगवान को और समर्पण करता, चेतना शुद्ध हो जाती, तो इसलिए भगवान कभी कष्ट देते हैं, कभी अपमान करवा देते हैं भक्त का, लेकिन ये सब उसके शुद्धिकरण के लिए है। भक्त को ये विश्वास होना चाहिए, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम्, जो कुछ भी है भगवान की कृपा। तो देखिए, इंद्र को भी रक्षा कर रहे हैं भगवान उसका मान तोड़कर, अहंकार तोड़कर, और ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं इंद्र से बचाकर, वर्षा से बचाकर। तो ऐसे सोचकर श्री कृष्ण ने फिर एक बहुत सुंदर लीला करने का मन में ठानी, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करने का सोचा और वो चले गए। उस समय सारे ब्रजवासी पुकार रहे थे, कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, चारों तरफ पानी आ रहा था, बढ़ रहा था, आंधी तूफान, बड़े बड़े बूंदे पानी की गिर रही हैं ऊपर से, और भयंकर तूफान, प्रलय के समय का तूफान। और ऐसे समय में श्री कृष्ण गोवर्धन पर गए और उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया। भागवत में वर्णन है कि जैसे एक हाथी मशरूम को उठाता, मशरूम समझते हैं आप, वो बारिश के समय है छोटा छोटा, वो छतरी के जैसा हो जाता है, हाँ अड़म्बी, ओके। तो जैसे वो उस उसको हिंदी में कुकुरमुत्ता कहते हैं या अड़म्बी। ओके, जैसे वो हाथी, अभी हाथी के लिए उसको उठाना क्या बड़ी बात है, हाथी इतना विशाल होता है तो बच्चा भी उठा लेता है, तो जैसे हाथी उसको उठा लेता, मतलब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी कृष्ण को। जाकर कृष्ण पहले जिम में नहीं गए बॉडी बनाने के लिए, और फिर आकर बड़ी मेहनत से बस मरने वाले हैं उठा लिया, नहीं, बड़े प्रेम से उठा लिया। और वो भी किस पे, सीधे हाथ पे भी नहीं उठाया भगवान ने, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर, दिखाने के लिए कि तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये कुछ नहीं, किसी का अपमान करना हो तो ऐसा करना होता है, बाएं हाथ की छोटी, जैसे कोई बोले मैंने बाएं हाथ की छोटी उंगली से मार दिया उसको, तो श्री कृष्ण ने ये दिखलाया, तो आराम से उठा लिया उसको और उठाकर खड़े हो गए। और उस समय उन्होंने सबको कहा, गोपों को, ग्वाल बालों को, सारे ब्रजवासियों को, सब इसके अंदर आ जाओ, यहां पर तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, चिंता मत करो। दरअसल एक प्रश्न आचार्य करते हैं कि गोवर्धन ठीक है बड़ा पर्वत था, लेकिन ब्रज में तो बहुत सारे लोग थे, लाखों तो गायें थी, केवल नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी, फिर बाकी इतने सारे लोग, उनकी गायें, उनके और अन्य प्राणी, फिर उनके घर वाले, ये सब कैसे आ सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ गोवर्धन को, तो गोवर्धन इतना भावविभोर हो गया कि वो फैल गया, और इसीलिए गोवर्धन के ऊपर जो वर्षा हो रही थी, इंद्र के, इंद्र अपने वज्र के रूप में भेज रहे थे, उनको ऐसे लग रहा था गोवर्धन को, एक आचार्य वर्णन करते हैं कि मानो कोई फूल फेंक रहा हो उसके ऊपर, भाव विभोर थे। ऐसा वर्णन है कि जो प्राणी थे उसके ऊपर, गोवर्धन के ऊपर, जब वर्षा होने लगी भाग रहे थे, जैसे ही कृष्ण ने उठाया गोवर्धन को, वे लोग भी इतना आनंदित हो गए कि वो बहुत आराम से गोवर्धन की चोटी पर जाकर बैठ गए। ऊपर से बारिश आ रही है इतनी तेज वर्षा और आंधी और तूफान, और वो आराम से गोवर्धन नीचे भी नहीं, गोवर्धन की चोटी पर जाकर बैठ गए आराम से, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? कृष्ण के हस्त का स्पर्श हुआ था गोवर्धन को। वैसे ही हम लोग जान सकते हैं कि अपने जीवन में भी, अगर हमारे जीवन में कृष्ण का स्पर्श हो जाए हमें, तो जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट नहीं लगते हैं, हम बड़े आराम से सुखी रह सकते हैं। तो ऐसे ही गोवर्धन में हुआ, और सब लोग फिर नीचे आ गए। और आप जानते हैं गोवर्धन के नीचे क्या व्यवस्था की थी भगवान ने? भगवान जानते हैं कि सब गोवर्धनवासी आएंगे, ब्रजवासी आएंगे, 7 दिन तक रुकेंगे। आप सोचिए, कोई पत्थर उठाया जाता है तो उसके नीचे क्या होता है? मिट्टी होगी, कीचड़ होगा, गंदगी होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, और क्या होगा? अगर आप बाहर जाइए, कोई बहुत दिनों से पत्थर रखा हो उसको उठाइए, तो उसके नीचे क्या मिलेगा? एसी रूम तो नहीं मिलेगा वहां पर। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो उसके नीचे क्या होना चाहिए? यही सब। लेकिन जब ब्रजवासी गए नीचे गोवर्धन के, तो वहां पर बहुत सुंदर सरोवर थे, बहुत सुंदर बगीचे थे, उद्यान थे वहां पर, बहुत हरी हरी घास थी गायों के खाने के लिए। गायों ने जैसे ही देखा, वो भूल गई कि बारिश आ रही है, वो अपना घास खाने में तैयार है। तो देखिए, कृष्ण सब व्यवस्था कर दिया उन्होंने, हो सकता है गोवर्धन के नीचे ये व्यवस्था थी, आराम से खड़े रहो। तो सब लोग आ गए, और 7 दिन 7 रातों तक बारिश होती रही तेज। इंद्र प्रयास करते रहे कि ये जो बालक है ये हार जाए, लेकिन कृष्ण बड़े आराम से उठाकर खड़े रहे। हाँ, जो बाकी अन्य गोपबाल थे, गोप थे, उन्होंने अपनी अपनी छड़ी लगा दी, ऐसे ऐसे पकड़कर खड़े थे छड़ी को, कि कहीं कृष्ण का हाथ दर्द हो गया। अभी इतना 7 साल का बालक, इतना सा तो हाथ था उनका टोटल पूरा, अब उसमें भी छोटी उंगली, वो भी उल्टे हाथ की। सारे ब्रजवासी सोच रहे थे कभी उगठो सारे जाएंगे, तो अपनी अपनी डंडियां लगा के खड़े हो गए छड़ियां। तो कृष्ण ने देखा, उनको लगा अच्छा अच्छा ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोगों ने उठाया। तो कृष्ण ने क्या किया, जरा सा हिलाया गोवर्धन, थोड़ा सा, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था और इधर सब खड़े थे डंडिया लगा के, कृष्ण ने थोड़ा सा हिलाया, जरा सा गोवर्धन टेढ़ा हुआ, इनकी सारी डंडिया टूटी, सब गिर पड़े। तब इनको पता चला हमने नहीं लगाया। एक स्थान पर तो वर्णन है कि कृष्ण एक हाथ से गोवर्धन उठा के दूसरी हाथ से बांसुरी बजाने की इच्छा कर रहे थे। कृष्ण बड़े आराम से खड़े थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। आप लोग देखते हैं ना वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होती है, हम पहले देखा करते थे जब बहुत स्कूल में थे छोटे, तो हम लोग वो वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन देखते थे। तो एक बड़ा पहलवान आता था, वो शरीर ऐसा बना हुआ मोटा तगड़ा, और वो आकर उसको पकड़ता था, हाथ में पाउडर वाउडर लगाता था, पता नहीं क्या क्या करता था, और उसको पकड़ता था। बड़ी देर तो ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहता था, पता नहीं क्या करता था, शायद ध्यान करता था श्री कृष्ण का कि आपने गोवर्धन उठाया, कम से कम मैं ये तो उठा लूं। और फिर उसको उठा के बड़ी मेहनत से यहां और फिर ऊपर ले जाता था बस, और कुछ ही सेकंड निश्चित 15-20 सेकंड, और उसका मुंह देखने वाला होता था कि अगर 5 सेकंड और पकड़ेगा तो मर जाएगा, और फिर उसको नीचे फेंक देता था, लोग ताली बजाते थे, हाँ मेडल मिल गया। कृष्ण ऐसे नहीं थे, उनका उनका मुख देखकर लग नहीं रहा था कि वो भी मरने वाले हैं, उनके वो तो मुस्कुरा रहे थे, आनंद से सबकी ओर देख रहे थे, और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी उनको उठाने के लिए। गोवर्धन इतने हल्के हो गए थे कृष्ण का स्पर्श पाकर कि उनको जस्ट बस स्पर्श किया हुआ था, कोई मेहनत नहीं। तो ऐसे 7 दिन 7 रात, और सारे लोग गोपियां थी, गोप थे, तो ये ऐसी लीला थी जहां कोई रोक नहीं सका। वैसे तो जो गोपियां होती थी जब कृष्ण को देखती थी तो अपने बड़ों के सामने तो नहीं देख सकती थी, तो जब बड़े आते थे उनको अंदर चले जाना होता था, कृष्ण को नहीं देख पाती थी। ये लीला में सबको छूट, गोपियां हैं वो आराम से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, गोप बाल हैं, ग्वाल बाल हैं, सब कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण आराम से खड़े हैं गोवर्धन लेकर, और सब केवल कृष्ण को निहार रहे हैं। 7 दिनों तक वो खड़े रहे। आप सोचिए भूख प्यास का क्या हुआ होगा, 7 दिनों तक कुछ तो, गायें तो ठीक है चरने लग गई, लेकिन बाकी लोग, उन्होंने क्या वहां पर पूरी रसोई बनाई थी, क्या हुआ था? कोई चिंता नहीं, कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं तो किसी को भूख नहीं, किसी को प्यास नहीं, ये कृष्ण लीला, ये कृष्ण की शक्ति। तो ऐसे सब खड़े रहे, 7 दिन हो गए। इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा ली, गोवर्धन के ऊपर का एक पेड़ भी नहीं टूटा, गोवर्धन ऐसे का वैसे ही रहा। तो उसके बाद 7 दिन बाद इंद्र ने देखा कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी, इतने में तो पूरा प्रलय हो जाता है, लेकिन ये तो ब्रज में कुछ भी नहीं हुआ। कई स्थानों पर अलग अलग वर्णन है, एक स्थान पर वर्णन है कि भगवान का सुदर्शन चक्र वो गोवर्धन के आसपास घूम रहा था, तो जितनी बारिश हो रही थी ऊपर ही सुखा देता था, वो नीचे पानी ही नहीं आता था, ऊपर सुखा रहा था। ऐसे बहुत सारे वर्णन हुए। तो फिर गोवर्धन उठाया, और इंद्र को तब पता चला कि ये तो कोई साधारण बालक नहीं है जिसको मैं कह रहा था। तो इंद्र ने सोचा तो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। देखिए देवी देवता गलती करते हैं, बाद में क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी तो बहुत गलतियां करते हैं, ब्रह्मा जी की गलतियां तो गिनने लायक ही नहीं है। ब्रह्मा जी आंख बंद करके आशीर्वाद दे देते हैं। दरअसल जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो उस समय ब्रह्मा जी आए भगवान के सामने, भगवान ने बड़े गुस्से में देखा, ब्रह्मा जी घबरा गए। भगवान कह रहे थे देखो तुम्हारे कारण मुझे ये रूप लेना पड़ा, आधा शरीर नरका राधा, कुछ भी आशीर्वाद दे देते तुम्हारे जो मन में आता है, अगली बार नहीं करना। ब्रह्मा जी ने जो हो जाए अगली बार नहीं कर, फिर रावण को दे दिया। ब्रह्मा जी ऐसे गलतियां बहुत करते हैं, कोई भी वो असुर ने तपस्या की, ये चाहिए मुझे, हाँ तथास्तु। एक बार दो राक्षस थे, उन्होंने मधु और कैतब, उन्होंने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की, बड़े ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या मांगते, बस एक छोटी सी चीज चाहिए, क्या? कि हम पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि इन स्थानों पर नहीं मरे, बाकी किसी भी स्थान पर ठीक है। इस जगत में और कोई स्थान है ऐसा जहां पृथ्वी नहीं हो, जल नहीं हो, वायु नहीं हो, आकाश नहीं हो? यही 5 चीजों से तो सारा जगत बना है। बड़े बुद्धिमान थे, और ब्रह्मा जी की बुद्धि देखी, पता नहीं क्या हुआ, कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, अब ब्रह्मा जी ने दे दिया आशीर्वाद, अब तो वो अमर हो गए, कहां मारेंगे उनको। ये तो सारा जगत इन पंच महाभूत से बना हुआ है, ये भौतिक जगत कहीं भी चले जाइए आप, ये तो पंच महाभूत है ही वहां। तो बड़े आश्चर्य, और ब्रह्मा जी दे देते हैं, गलतियां बहुत करते हैं। हाँ फिर भगवान को मारना पड़ा, उनको भी मारा भगवान ने। कैसे मारा? भगवान उनके पास गए तो उन्होंने कहा, मधु कहते इतना अहंकार हो गया, भगवान से कहते आप हमसे वर मांगिए। भगवान ने अच्छा, बोले हाँ आप मांगिए, क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा मैं युद्ध करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है चलो युद्ध करें, क्योंकि उनको मालूम था हम तो मर ही नहीं सकते, पृथ्वी आकाश जल भूमि कहीं मर ही नहीं सकते, तो युद्ध कीजिए। ठीक है, भगवान ने युद्ध किया, अपनी गोद में बिठाया, मार डाला। मधु कहते हम मर कैसे गए? अरे मरे क्यों, भगवान का जो शरीर है वो थोड़ी पंच महाभूत से बना है, वो तो दिव्य है, तो उसको उधर मार दिया भगवान ने। तो ऐसे देवता बहुत गलती करते रहते। ब्रह्मा जी, शिव जी गलती करते हैं। एक असुर ने तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या मांगते हो? मैं जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर फूट जाए, शिव जी ने कहा तथास्तु, और वो शिव जी के ही सर पर हाथ रखने के लिए भागने लगा। अब शिव जी तो भागे, क्योंकि अभी भी वरदान दिया और शिव जी ने खुद दिया, सर फूट जाएगा। दरअसल उसकी इच्छा थी कि शिव जी का सर फोड़ू और फिर पार्वती के साथ उसको लेकर मैं विवाह करूं। अब शिव जी भाग रहे हैं और पीछे पीछे हाथ लेकर, अब भागते भागते भगवान को पुकारा शिव जी ने, क्योंकि और कौन बचाएंगे। अब भगवान को पुकारा, भगवान आए सामने, एक छोटे से ब्रह्मचारी। शिव जी पहले ही मना किया था, ऐसे बंबई की भाषा में कहते पंगा मत लिया करो, अच्छी भाषा नहीं है, पहले मना किया था ये सब मत किया करो। तो अब क्या हो, बोले अब क्या, आप कैसे भी बचाइए मुझे नहीं पता। ठीक है खड़े हो जाओ पीछे। भगवान आए सामने और भगवान मुस्कुराए। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, अच्छे अच्छों की छुट्टी। तो श्री कृष्ण ने कहा, पूछा उस ससुर से, अभी क्या बात है कहाँ जा रहे? तो बोले ये मुझे वरदान मिला। क्या वरदान मिला तुम्हें? तुमने कहा मुझे वरदान मिला है कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूंगा उसका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया वरदान, किसने दिया? शिव जी ने। बोले अरे तुम भी किसकी बातों में आ गए, उसके अंदर शक्ति है क्या वरदान देने की? वो तो कुछ भी बोल देते हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को, अरे नहीं कुछ मैं जानता हूं, कोई शक्ति नहीं उनके अंदर। नहीं नहीं बहुत, अरे नहीं है, विश्वास नहीं है तुम्हें? नहीं। अच्छा रखो अपने सर पर हाथ, पता चल जाएगा अभी। उसने कहा ठीक है। So, ऐसे देवता बहुत गलती करते रहते। हमारे इंद्र है, शिव है। शिव जी ने और एक गलती की थी। एक बार शिव जी ने भगवान से कहा कि मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो ठीक नहीं है, मोहिनी रूप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं देख पाओगे। मैंने कहा नहीं नहीं, वो जब वहां पर आपने दिखाया था तब मैं विष पीकर चला गया था, मैं था नहीं वहां पर, तो मैं भी देखना चाहता, क्योंकि शिव जी चले गए थे। वो आए विष पिया, देवता ने कहा चलो हो गया, अभी आपका काम हो गया, अब जाइए हम लोग कर लेंगे। अब फिर मोहिनी अवतार बाद में हुआ था, तुमने कहा देखा नहीं था, मैं तो देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो अभी भी समझा रहा। बोले नहीं दिखाना ही आप, ठीक है। भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट किया, जैसे ही मोहिनी को देखा शिव जी साहब भूलकर भागने लगे उसके पीछे। उनके गण खड़े हैं, शिव जी के शिष्य, शिव जी के अनुयायी, शिव के गण सब खड़े देख रहे क्या हो गया, ये शिव जो एकदम धीर पुरुष कभी विचलित नहीं होता, ये स्त्री के पीछे भाग रहा है। लज्जा छोड़कर भागे शिव के, शिव जी। भगवान ने पहले ही कहा था शिव जी को नहीं देख। शायद यही कारण है कि हम लोग मोहिनी मूर्ति नहीं रखते अपने मंदिरों में, हम लोग चाहते हैं कि भक्त बने रहे। तो ऐसे बहुत गलतियां, अभी देवताओं की गलतियां गिनने लगे तो पता नहीं कैसे कैसे भगवान रक्षा करते हैं देवताओं की, चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो, बहुत से देवता। तो अब इंद्र ने भी गलती करी और अब इंद्र आ रहे हैं क्षमा मांगने के लिए। अब इंद्र ने सोचा कि इतनी बड़ी गलती हो गई, अब कृष्ण के सामने जाऊं कैसे, थर थर कांपने लगे। तो उन्होंने सोचा एक उपाय है, सुरभि के पास गए। सुरभि ये गाय, सुरभि गाय, तो सुरभि के पास गए प्रार्थना की, आप चलिए क्योंकि आपको देखते ही कृष्ण शांत हो जाएंगे, मैं जाऊंगा तो गोली मार देंगे या जो भी करेंगे। तो बहुत घबरा रहे थे, इंद्राना नहीं चाहते थे। तो फिर अगर हम गोवर्धन जाएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा करते करते वहां पर एक स्थान आता है गोविंद कुंड, तो वहां पर श्री कृष्ण बैठे थे। ये सब होकर जब श्री कृष्ण ने उठाया, 7 दिन हो गए, फिर सब वर्षा समाप्त तो हो गई। और आपको पता है क्या हुआ, सारी वर्षा समाप्त हो गई, सब कुछ बंद जैसा था वैसा ही नॉर्मल, ब्रज में कोई बदलाव नहीं आया। जहां बाढ़ आती है वहां तो सारा नुकसान हो जाता, कुछ नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात, 7 दिन 7 रात खड़े रहने के बाद अब जब सब सूख गया, कोई बाहर जाने को तैयार नहीं। गाय वहां खड़ी हुई है, ग्वाल बाल खड़े हुए हैं।